नमस्कार भारत, तारीख 4 जून दिन सोमवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अवैध प्रवासियों को लेकर इटली सरकार की दो टूक, नए गृह मंत्री बोले यूरोप का शरणार्थी शिविर नहीं बनेगा देश। चुनावी साल में कांग्रेस ने लगाया मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, बीजेपी नेता बोले
हमारा कहीं कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी के नाते या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते कोई निगेटिव रोल नहीं है।
और खास रिपोर्ट, श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर शुक्रवार की घटना की कहानी, चश्मदीदों की जुबानी।
वहाँ से एक जिप्सी आई, सीआरपी जिप्सी, ये लाइव है मेरे आंखों के सामने वाका है, तो उस पे पसरा हो गया, पहले कैसा उसने उसको टक्कर मारी।
सुनवाएंगे पाकिस्तान डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। इटली के नए गृह मंत्री मातेओ साल्विनी ने कहा है कि वे इटली को यूरोप का रिफ्यूजी कैंप नहीं बनने देंगे। मातेओ साल्विनी कल सिसिली द्वीप के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद गैरकानूनी अप्रवासियों को बाहर भेजने के लिए नए केंद्र बनाने की ज़रूरत है। भूमध्य रेखा को पार कर यूरोप की तरफ जाने वाले अप्रवासियों के लिए सिसिली एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर कोरिया ने अपने 3 उच्च सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। इस खबर पर दक्षिण कोरियाई सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सियोल और अमेरिका में कुछ अधिकारियों ने बताया है कि रक्षा प्रमुख पाक योंग सिक, सेना के राजनीतिक ब्यूरो के निदेशक और जनरल स्टाफ के प्रमुख को उनके पदों से हटाया गया है। उनकी जगह युवा अधिकारियों को रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सेना में किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी मुलाकात को लेकर गतिरोध बना हुआ है। ट्यूनीशिया में मौजूद अधिकारियों ने बताया है कि इटली की तरफ जाने वाले अप्रवासियों की एक नाव ट्यूनीशिया के तट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कम से कम 46 अप्रवासियों के मारे जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि लगभग 60 से अधिक अप्रवासियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस दुर्घटना में सुरक्षित बचाए गए एक अप्रवासी वेल फर्जेनी ने बताया उस नाव में 75 से 90 लोगों को ले जाने की क्षमता थी, जबकि उसमें 180 से 190 लोग सवार थे। हम अपने हाथों से पानी को छू सकते थे और पानी लगातार नाव में आ रहा था। मुझे नहीं मालूम कि नाव में कितना पानी घुस गया था। जो लोग भागने में कामयाब रहे वे बच गए और बाकी वहीं डूब गए। ये थे एक अप्रवासी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी जुलानी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास पूरी ताकत है कि वे साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच के सिलसिले में खुद को दोष मुक्त करार दें। यूएस टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। स्लोवेनिया में हुए आम चुनावों में दक्षिणपंथी दल स्लोवेनियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SDS को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। 90 सदस्यों वाली संसद में SDS 25 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। इसके साथ ही स्लोवेनिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि वे SDS के नेता जानेज जानसा को देश में नई सरकार बनाने का मौका देंगे। वहीं कॉमेडियन से नेता बने मार्जन सारेक की पार्टी सेंटर लेफ्ट दूसरे स्थान पर रही है। इस बीच जानसा के प्रमुख 4 विरोधी दलों ने उनके साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। वहीं जानसा का कहना है कि वे अन्य दलों के साथ मिलकर एक स्थिर सरकार बनाना चाहते हैं। जानेज जानसा ने कहा,
Slovenska demokratska stranka je otprta za sodelovanje. Pred Slovenijo so časi, ki potrebujejo sodelovanje.
SDS अन्य दलों के सहयोग के लिए तैयार है। आने वाले समय में हमें इस आपसी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। सरकार बनाने के लिए हमें सभी दरवाजे खुले रखने हैं। जो स्लोवेनिया की बेहतरी चाहते हैं वे हमारे साथ सरकार बना सकते हैं। ये थे स्लोवेनिया के नेता जानेज जानसा के शब्द। ग्वेटेमाला में मौजूद अधिकारियों के अनुसार ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ग्वेटेमाला की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि रविवार को फ्योगा ज्वालामुखी के फूटने से लावा बहता हुआ एल रोडियो गांव तक पहुंच गया, जहां उसने घरों को नुकसान पहुंचाया और कई लोग उसमें झुलस गए। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना के 4 महीने गुजर जाने के बाद कल उस स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपने डिप्लोमा प्राप्त किए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। एक कहानी और दो पहलू, दोनों ही पक्षों के मजबूत दावे। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर शुक्रवार को हुई घटना की। क्या कहते हैं चश्मदीद और क्या कहना है सीआरपीएफ का? नमस्कार भारत में हम आगे सुनवाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर से। भारतीय समय के मुताबिक अब से कुछ घंटे पहले उत्तर कोरिया से खबर आई कि वहां सेना के 3 आला अधिकारियों को हटा दिया गया है। इन 3 अधिकारियों की जगह युवा अधिकारियों को लाया गया है। विश्लेषकों की राय है कि उत्तर कोरिया के सबसे बड़े नेता किम जोंग उन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 12 जून को प्रस्तावित मुलाकात के लिए जो रुख अपना रहे हैं उसे लेकर उत्तर कोरिया की सेना सहज महसूस नहीं कर रही है। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही किम जोंग उनके करीबी जनरल किम योंग चोल से मुलाकात की थी और 12 जून को होने वाली बातचीत को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी से कल ही खबर आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद उत्तर कोरिया दौरे की योजना बना रहे हैं। उत्तर कोरिया और सीरिया मित्र देश माने जाते हैं, यानी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। उधर इटली में नई सरकार के कमान थामने के बाद नीतियों में बदलाव की आहट मिलने लगी है, खासकर प्रवासियों को लेकर। इटली के नए गृहमंत्री मात्तेओ सल्विनी ने कहा है कि उनका देश यूरोप का रिफ्यूजी कैंप नहीं बन सकता। उन्होंने अवैध प्रवासियों को निकाले जाने पर जोर दिया है, हालांकि इटली के विपक्षी नेता उनके रुख की आलोचना कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट नवीन नेगी से।
इटली के नए गृहमंत्री मैटियो सेल्विनी जब रविवार को सिसिली द्वीप के दौरे पर गए तो कई लोग उन्हें देखने और हाथ मिलाने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन कई हाथ ऐसे भी थे जिन्होंने अप्रवासियों के समर्थन वाले बैनर थामे हुए थे। सिसिली पहुंचने के बाद सेल्विनी ने कहा कि वे इस द्वीप को यूरोप का रिफ्यूजी कैंप नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही दक्षिणपंथी दल लीग पार्टी के नेता सेल्विनी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अप्रवासियों के प्रति कठोर नहीं है, बल्कि वे एक व्यावहारिक कदम उठाना चाहते हैं। अप्रवासियों के लिए एक सीमा तय करना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजने का मतलब होगा कई जिंदगियों को बचाना। वे लोग जो नावों के जरिए बाहर जा रहे हैं और इटली के लोग जो अब इन अप्रवासियों के साथ अधिक ताल्लुक नहीं रखना चाहते, दोनों के लिए ही यह बेहतर रहेगा। मैं उस व्यापार को भी खत्म करना चाहता हूं जिसके जरिए बहुत से आपराधिक समूहों को लाखों यूरो प्राप्त होते हैं और इनके जरिए वे गैर कानूनी अप्रवासन करवाते हैं। ये थे इटली के गृह मंत्री मैटियो सेल्विनी के शब्द। उत्तरी अफ्रीका से यूरोप की ओर जाने वाले अप्रवासियों के लिए इटली एक प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहां अप्रवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच कई आलोचकों ने सेल्विनी की नीतियों के सफल होने पर शक भी जाहिर किया है। इटली की सांसद और वामपंथी दल फ्री एंड इक्वल पार्टी की नेता लॉरा बॉल्ड्रिनी ने बीबीसी से कहा, सेल्विनी ने सिसिली जाकर समाधान खोजने की जगह समस्या पैदा की है। मेरे ख्याल से सेल्विनी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे अभी भी चुनाव प्रचार कर रहे हों। अब वे एक मंत्री हैं और उन्हें एक मंत्री की तरह जिम्मेदार बनना चाहिए। ये थे इटली की सांसद लॉरा बॉल्ड्रिनी के शब्द। यूरोपीय संघ में अर्थव्यवस्था के लिहाज से इटली चौथा सबसे बड़ा देश है। मार्च में हुए आम चुनाव में यहाँ किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था और इटली में कई महीनों तक राजनीतिक गतिरोध बना रहा। ऐसे में सत्ता विरोधी दल फाइव स्टार मूवमेंट और दक्षिणपंथी दल लीग पार्टी ने मिलकर पिछले हफ्ते ही सरकार बनाई है। लीग पार्टी शुरुआत से ही अप्रवासियों की विरोधी रही है।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। अगली खबर भारत के मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मामले में जांच की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। सुनिए भोपाल से शुरय नियाजी की यह रिपोर्ट।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में रविवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत की कि प्रदेश की मतदाता सूची में 60 लाख फर्जी मतदाता हैं। इसके बाद एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि मतदाता सूची में हुए फर्जीवाड़े से जुड़े पुख्ता सबूत उनके पास हैं। कमलनाथ ने कहा,
लगभग 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस पर छानबीन कराई, पर सबसे पहली चीज तो ये है कि मध्य प्रदेश की आबादी 40% जो बढ़ी है, 24% बढ़ी है और जो मतदाता है वो 40% बढ़े। ये भी एक विश्व का रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में कि इस सीमा समय में 24% आबादी बढ़ गई और 40% मतदाता बढ़ गए। ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये तो जानबूझकर ये किया गया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम एक ही पोलिंग बूथ पर 4-5 जगह हैं। वहीं ऐसा भी देखने में आया है कि उसी व्यक्ति का नाम दूसरे पोलिंग बूथ पर भी एक से अधिक संख्या में अलग अलग नामों से मौजूद है, लेकिन फोटो और पिता का नाम एक ही है। कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें एक वोटर का नाम 2 विधानसभा की वोटर लिस्ट में मौजूद है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग इन फर्जी मतदाताओं की जाँच करे और मतदाता सूची का प्रकाशन नए सिरे से जुलाई के अंत तक करे। पार्टी यह भी चाहती है कि मतदाता सूची बनाने वाले निर्वाचन अधिकारी यह भी शपथ पत्र दें कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। वहीं प्रदेश भाजपा ने इस बात से इनकार किया है कि इस मामले में सरकार की कोई भूमिका है। प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा,
नहीं, मैं ये सच्चाई नहीं है या है, ये काम निर्वाचन आयोग का है। मतदाता सूचियों का प्रकाशन केवल और केवल निर्वाचन आयोग का काम है। अगर कहीं कोई दोष है भी तो उसको दूर करना निर्वाचन आयोग का काम है और वो दूर करें। हम तो चाहते हैं कि प्रमाण को पारदर्शी निर्वाचन सूची हो। मतलब हमारा कहीं कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी के नाते या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते कोई निगेटिव रोल नहीं है। अगर कोई तकनीकी त्रुटि है, अगर किसी गलती के कारण किसी व्यवस्था सॉफ्टवेयर या किसी व्यक्ति के कारण भी दोष आया है तो दोष को दूर करना चाहिए।
प्रदेश में लगभग 5 करोड़ वोटर हैं और अगर कांग्रेस की बात पर यकीन किया जाए तो 60 लाख फर्जी मतदाताओं का मतलब 12% मतदाता। पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ शिव अनुराग पटेरिया मानते हैं कि 12% फर्जी मतदाताओं का अगर गलत उपयोग होता है तो निश्चित तौर पर परिणाम में इसका असर पड़ेगा।
60 लाख यानी लगभग 5 करोड़ मतदाताओं वाले प्रदेश में अगर 60 लाख मतदाता फर्जी, डुप्लीकेट, मृत या गायब मतदाता होते हैं तो अगर इनका दुरुपयोग किया जाए तो बड़ी संख्या हो सकती है। लगभग यह संख्या 12% होती है और मध्य प्रदेश में सामान्य स्थिति में चुनाव होते हैं वहाँ जीत 2-4% होती है। 2008 में जो बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन हुआ था जिसमें 72 सीटें कांग्रेस ने जीती थी उसमें 4% का अंतर था, और अगर आप 2013 में देखें तो ये अंतर लगभग 8.5-9% के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में फर्जी मतदाता, गायब मतदाता एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और मुझे लगता है हर दल इसमें शामिल है, जहां जिसका वर्चस्व है वो इसका उपयोग करता है।
वहीं चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की जांच के आदेश दिए हैं, इसके लिए उन्होंने एक जाँच दल गठित कर दिया है। यह दल विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी मतदाताओं की पहचान करेगा और 7 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। कश्मीर के श्रीनगर में बीते शुक्रवार को CRPF की एक गाड़ी की चपेट में आकर 3 लोग घायल हो गए थे, उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से घाटी में तनाव है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है ये जानने के लिए हमारे साथी माजिद जहांगीर ने घटनास्थल का दौरा किया, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
ये चीखें और नारे 31 वर्ष के कैसर अहमद भट्ट के जिनाजे को दफनाने के समय जिनाजे में शामिल हजारों लोगों की हैं। कैसर अहमद भट्ट को CRPF की एक जिप्सी ने बीती शुक्रवार को श्रीनगर के नवहटा इलाके में कुचला था, जिसके बाद कैसर की अस्पताल में मौत हो गई। कैसर की मौत के बाद श्रीनगर में काफी तनाव पैदा हो गया था। नवहटा चौक में इतवार को सभी दुकानें बंद थीं और गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत कम थी। यहाँ शुक्रवार को पेश आई घटना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बहरहाल यहाँ अपनी बंद दुकान के बाहर एक दुकानदार बैठे हुए थे जो उस घटना के चश्मदीद हैं। उन्होंने जो देखा उसको उन्होंने इस तरह बयां किया।
उधर से आ गई CRPF जिप्सी, अचानक इधर लोगों की बहुत भीड़ थी तो उस टाइम जब घुस गए उधर लोगों में वो CRPF जिप्सी तो पथरा बहुत चला मतलब के दौरान फिर जिप्सी ने ना पीछे देखा ना आगे देखा, फिर वो भाग गई। तो इस दौरान एक को जिप्सी के नीचे से कुचल दिया, दूसरे को धक्का मार दिया और वो उधर गिर गया, जबकि वो फतेह का दल का था, वो ऑन स्पॉट ही मर गया।
कैसर को जिस दिन जिप्सी ने कुचला, उनके एक दोस्त उस समय उनके साथ थे। वो घटनाक्रम को याद करते हुए कहते हैं,
हम निम्मा जब हमने पढ़ी, हम बाहर निकले, कुछ भी नहीं था, हम एक जगह बैठे थे, चार पांच दोस्त, वहाँ पे कैसर भी था हमारे साथ, बातें कर रहे थे। वहाँ से एक जिप्सी आई, सीआरपी जिप्सी, ये लाइव है मेरे आंखों के सामने वाका है। जब वो आई तो उस पर पथरा हो गया, वो नवहटा चौक में जब पहुंची तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहले उसने पहले कैसर जो था उसने उसको टक्कर मारी, जब वो नीचे जिप्सी के नीचे आ गया, उसके बाद एक और आदमी था वहां पे, एक मौलवी, फिर उसने उसको टक्कर मारी।
एक और चश्मदीद कहते हैं,
जब मैं पहुंचा जामिया चौक में, नवाटा चौक में, तो मैंने गर्दन को पीछे मोड़ा तो मैंने देखा जिप्सी आ रही है वहां से, लड़की भी बहुत थे, बहुत मॉब था वहां। तो ये कहेंगे ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहाने बना रहे हैं। अगर वहां से कुछ ऐसा वैसा वाकया होता तो ये सीआरपीएफ वालों को जिप्सी से बाहर निकालते, ऐसा कुछ नहीं था। जब गाड़ी आई, जब उसने हमारे नौजवान को कुचला, तब जाके हम पत्थर उठाने पे मजबूर हो गए।
10 साल पहले कैसर के माता पिता की मौत हो गई थी। बीते कई वर्षों से कैसर श्रीनगर के डलगेट इलाके में अपने चचा नजीर अहमद भट्ट के घर में रहते थे और पश्मीने का काम करते थे। यहाँ कैसर के घर में लोगों की काफी भीड़ उमड़ आई थी। नजीर अहमद कहते हैं कि कैसर के एक दोस्त के पिता ने उन्हें कैसर के साथ पेश आए हादसे की उन्हें सूचना दी थी। नजीर अहमद ने घटना के बारे में जो सुना था उसको उन्होंने इस तरह बताया।
जुम्मा के दिन की बात है, वो यहाँ से नमाज पढ़ने के घर से गए थे जामा मस्जिद में, रोजा रखे थे, बाहर आ गए, उधर वहाँ मतलब दागा दौड़ी हो रही थी लोगों की, तो ये भी आ गए। इतने में एक सीआरपीएफ की जिप्सी आ गई, लोग भाग रहे हैं, शायद उसको पत्थर मार रहे थे, उसने किसी को जख्मी कर रखा था आगे, वो भाग रही थी गाड़ी, भागते भागते 3 जवानों को इसने अपने जद में ले लिया, जिनमें से हमारे इस बच्चे की डेथ भी हो गई फिर शाम को।
हालांकि सीआरपीएफ का कहना था कि उनकी गाड़ी को करीब 500 लोगों ने घेर कर उनकी गाड़ी पर जबरदस्त पथराव किया और गाड़ी में मौजूद जवानों को भीड़ लिंच करना चाहती थी। पुलिस ने इस घटना को लेकर एक मामला सीआरपीएफ के खिलाफ दर्ज किया है और दूसरा मामला दंगे के खिलाफ। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। नवीन नेगी अखबारों के पन्ने पलट चुके हैं। जी नवीन नेगी,
वात्सल्य, आज के अखबारों पर नज़र दौड़ाएं तो इंडियन एक्सप्रेस ने अभी जो हम खबर अपने श्रोताओं को सुना रहे थे जम्मू कश्मीर के बिगड़े हालातों से जुड़ी हुई, उसी को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों से बातचीत के लिए आगे आने और राज्य को कत्लेआम से बचाने की अपील की है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि केंद्र की ओर से बातचीत की जो पेशकश हुई है वह अलगाववादियों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो मुख्यधारा में जुड़ सकें और ये मौका हर दिन नहीं मिलने वाला। अगर बाकी खबरों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो इसके साथ ही कई अखबारों में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जुड़ी एक खबर को सभी अखबारों ने छापा है और जिसमें बताया गया है कि मॉरिशस जा रहा उनका विमान 14 मिनट के लिए रडार से गायब हो गया था।
जी, वो दक्षिण अफ्रीका जा रही थी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, बल्कि पहुंच भी गई हैं और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से उन्होंने मुलाकात की और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे आपने खुद उस पर बात की, उसकी जानकारी के लिए
जी वात्सल्य, वो हमारी वेबसाइट पर भी हमारे श्रोता अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर से आपकी बात हुई थी, जिन्होंने आपको पूरा डिटेल दिया था कि वो 14 मिनट का वाकया क्या था।
जी जी बिल्कुल। और बाकी खबरों की तरफ लौट और खबरों पे बात करें तो रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। ये खबर छपी है हिंदुस्तान अखबार में और रेलगाड़ियों की लेट लतीफ़ी अब रेल अधिकारियों पर भारी पड़ने वाली है। हिंदुस्तान में जो खबर प्रकाशित हुई इसमें लिखा गया है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के जोनल प्रमुखों को आगाह किया है कि रेल सेवाओं में देरी का असर उनके प्रमोशन पर पड़ सकता है। अगर जिस भी इलाके की रेलें देर से चलेंगी तो फिर उस इलाके में जो जोनल प्रमुख होगा उसके प्रमोशन में भी उतनी ही देरी हो जाएगी। तो यानी अगर ट्रेनें देर से चलेंगी तो प्रमोशन भी देरी से होगा।
वैसे कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जोन हैं जहां पर रेलगाड़ियां अक्सर कई घंटे लेट से चलती हैं।
जी बिल्कुल, और मंत्री जी ने इसके लिए एक महीने का वक्त दिया है कि एक महीने के भीतर भीतर वो एक रिपोर्ट उनको उनके सामने पेश करें। इसके अलावा किसानों का जो आंदोलन चल रहा है 10 जून तक का, उसकी खबर अमर उजाला में छपी है कि इसका असर अब दिखने लगा है। दिल्ली की मंडियों में जो सब्जियों की आवक है वो कम हो गई है और जो खुदरा बाज़ार में जो फलों और सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें उछाल आने लगा है। और एक और कार्टून का मैं जिक्र कर दूं चलते चलते, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, और ये कार्टून छपा है पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई है उससे जुड़ा हुआ ये कार्टून है, जिसमें ममता बनर्जी की तस्वीर बनी है, उन्हीं का ये कार्टून है। इसमें लिखा गया है कि पीएम मटेरियल है ममता बनर्जी पीएम मटेरियल है, और उसमें लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इसलिए वो इसमें ज़्यादा संज्ञान नहीं ले रही हैं। तो ये कटाक्ष एक व्यंग है जो इसमें छापा गया है।
जी, लगातार ये घटनाएं सामने आई हैं और उसको लेकर दोनों तरफ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी बहस भी चल रही है। बहुत शुक्रिया नवीन नेगी अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख तय हो गई है। चुनाव 25 जुलाई को होने हैं। चुनाव के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहां क्या कुछ हो रहा है इसकी अपने ही अंदाज में तस्वीर पेश कर रहे हैं वस्तुल्ला खान पाकिस्तान डायरी में।
पाकिस्तान में आम चुनाव 25 जुलाई को होंगे, मगर चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही घोड़ा मंडी सज गई, जहां घोड़े का वंश चेक हो रहा है, वजन किया जा रहा है, हिन हिनाहट में खर्च नापी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि इससे पहले कितनी चुनाव रेसों में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आया है। इसके बाद पार्टी लीडर के साथ घोड़े की तस्वीर खींचती है और फिर रेस की सूची में नाम लिख लिया जाता है। चूँकि अगली रेस हर कीमत पे जीतनी है, इसलिए ये देखने का किसी पार्टी के पास समय नहीं कि जिस घोड़े को ख़रीदा जा रहा है कहीं उसके सुमो तले कभी कोई आदमी तो नहीं कुचला गया, कहीं उसे या उसके पुरखों को किसी ने कभी तांगे या गाड़ी में तो नहीं जोता, कभी ये घोड़ा किसी बदमाश लुच्चे या रेपिस्ट की सवारी तो नहीं बना रहा, मालिक को कभी बीच मुसीबत में जीन से उछाल के तो नहीं भाग गया। बस आओ, परिचय कराओ, चुनाव तवेले में दाखिल हो जाओ। अजब लोकतंत्र है जिसमें वोटर इंसान है और चुनाव घोड़े लड़ रहे हैं। चुनाव की दौड़ में हजारों घोड़े भाग लेंगे, मगर लगभग 1100 ही जीत के शपथ ले पाएंगे कि वो नए मालिक के वफादार रहेंगे, साइज जैसा भी हो चूचरा नहीं करेंगे, भले उन्हें मालिक गाड़ी में जोते, रेस में भेजे, अपनी सवारी के लिए रखे या किसी को किराए पे दे दे, किसी बात पे बुरा मना के अगली दो टांगों पे खड़े होके विरोध नहीं करेंगे। बदले में दो वक्त ताज़ा हरी हरी घास, आला चोकर और खली, रोज़ाना मालिश और सुबह शाम की सैर। जिस घोड़े ने श्यानप्रति दिखाई या टेढ़ा सवाल पूछा या इनकार में गर्दन हिलाई, उसे किसी कोचवान के हवाले किया जा सकता है, चाहे वो गोली मारे, तांगे में जोते या जंगल में छोड़ दे। पर चुनाव में सिर्फ घोड़ों को ही खड़े होने की क्यों इजाज़त है? यूं इजाज़त है कि घोड़ा अपने मालिक का इंसान से ज़्यादा वफादार होता है, मगर मालिक का वफादार तो कुत्ता भी होता है। हाँ होता है, मगर कुत्ते इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उन पर सवारी नहीं गांठी जा सकती। आम चुनाव में क्या आम आदमी भी खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा हो सकता है, अगर वो अपना घोड़े होने का सर्टिफिकेट ले आए। कोई और सवाल? जी नहीं, ठीक है। तो फिर जाओ, चुनाव के दिन वोट देने ज़रूर आ जाना, फिर जाने तुम्हें कब मौका मिले।
वुसत साहब की डायरी में सवाल भी हैं और उनके ही अंदाज में जवाब भी हैं। कैसी लगी आपको ये डायरी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
رولا غیرہ کی لال بجری پر کھیلے جا رہے سال کے دوسرے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ فرینچ اوپن میں کل مہیلا ایکل ورگ میں 10ویں وریتا حاصل امریکہ کی سلونے اسٹیفنس اور 13ویں وریتا حاصل میڈیسن کیس چوتھے دور کی بادھا بھی پار کر گئی. وہیں پروش ایکل ورگ میں آسٹریا کے ڈومینک تھیم اور جرمنی کے الیگزانڈر زویرو بھی اپنے اپنے مقابلے جیتنے میں کامیاب رہے. اور اب سمیکشا. جب دیش کے جانے مانے لوگ کرکٹ میں سٹے بازی کریں گے تو عام لوگوں سے کیا امید کریں اور کیا اب اسے بھارت میں قانونی مانیتا دے دینی چاہیے؟ لائٹ کیمرا ایکشن ساؤنڈ. بھارت میں بالی ووڈ کے ابھینیتا ارباز خان کے لیے فلمی سیٹ سے الگ ہٹ کر آتی یہ آوازیں ان کے لیے نئی تھی اور مشکلیں بڑھانے والی بھی. دراصل ان کا نام آئی پی ایل کے میچوں میں پچھلے 5-6 سال سے سٹے بازی کرنے سے اچھلا. حالانکہ انہوں نے سویکار کیا کہ سال 2018 یعنی اس سال کے آئی پی ایل میں انہوں نے سٹا نہیں لگایا, لیکن یہ بھی مانا کہ 2,80,00,000 روپے وہ ہار گئے. پوچھ تاچھ کے لیے انہیں ممبئی کے کھان ٹھانے پولیس کی اوید وصولی نیرودک شاخہ نے بیان درج کرنے کے لیے بلایا.
میرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکا ہے, جو بھی پولیس کو مجھ سے پوچھنا تھا اس آن گوئنگ انویسٹیگیشن میں انہوں نے مجھ سے پوچھا, اس کا میں نے اس کا جواب دیا. اینڈ آئی ول کوآپریٹ ود دیم اینڈ آئی ول کنٹینیو ٹو کوآپریٹ ود دیم.
ارباز نے پولیس کو لگاتار سہیوگ دینے کی بات کی, لیکن سوال یہی کہ آئی پی ایل کی دنیا تو ویسے ہی بدنامی کا دنش چھیل چکی ہے. اس سال کے چیمپئن چنئی سپر کنگز تو ایسے ہی معاملوں میں پھنس کر 2 سال کا پرتیبندھ بھی دیکھ چکی ہے. کتنا گمبھیر مانا جائے یہ معاملہ اور کس حد تک خطرناک ہے, کرکٹ سمیکشک پردیپ میگزین کہتے ہیں.
ایک ہے بیٹنگ جو انڈیا میں الیگل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, دوسرا ہے فکسنگ. فکسنگ میں کیا بکیز پلیئروں کو پیسہ دیتے ہیں میچ کو اپنی پرفارمنس کو بدلنے کے لیے, وہ یہ 2 معاملے ہیں. کیس جو ارباز خان کا سامنے آیا ہے اس میں ابھی تک کوئی ایسا کوئی لنک نہیں ہے کوئی پلیئروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ سوچ کے کہ ارباز خان کے 2.5 کروڑ باقی نہیں لوگ کر رہے ہیں, پولیس والوں کو پتا ہے بہت ساری جنتا ہندوستان کی ہے جو سٹے بازی کرتی ہے.
خیر معاملہ اچھلا تو آئی پی ایل کے چیئرمین اور بی سی سی آئی کے پورو ادھیکاری راجیو شکلا نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑا.
This is purely with the police and you know the Thane police and Mumbai police. We have got nothing to do with that.
معاملہ ارباز اور پولیس کے بیچ کا, اور ایسے معاملے تو شاید سامنے آتے ہی رہیں گے. اب حل کیا ہو؟ پردیپ میگزین کہتے ہیں.
پولیس والوں کو اور کئی لا ایجنسی نے تو خیر ابھی ریکمینڈیشن بھی کی ہے کہ آپ سٹے بازی کو لیگل کر دیجئے, اس سے سرکار کو ٹیکس بنے گا اور دوسرا ریکارڈ پہ رہیں گے لوگ کہ کون سٹا لگا رہا ہے کیا لگا رہا ہے, اور وہ وائٹ پیسہ لگانا پڑے گا, ٹیکس دیں گے. تو میرا ماننا ہے کہ اگر بلیک منی اتنی سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو اس کو شاید لیگل کر ہی دینا چاہیے.
ادھر کوالالمپور میں کل سے مہیلا ایشیا کپ 2020 کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوا, جہاں بھارتی مہیلا ٹیم نے ملیشیا کو 142 رن سے ہار کا سواد چکھایا. بھارتی مہیلا ٹیم نے ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے متالی راج کے ناباد 97 رنوں کی مدد سے نردھارت 20 اوور میں 3 وکٹ کھو کر 169 رن بنائے, جس کے بعد پوری ملیشیائی ٹیم 13.4 اوور میں کیول 27 رنوں پر سمٹ گئی. اس کے علاوہ کل لیڈز میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 پاری اور 55 رن سے ہرا دیا. 189 رن سے پچھڑ کر پاکستان کی دوسری پاری کیول 134 رن پر ڈھیر ہو گئی. کھیل اور کھلاڑی کاریکرم میں آج بس اتنا ہی,
اور چلتے چلتے مکھیہ سماچار نوین نیگی سے.
بی بی سی سماچار. اٹلی کے نئے گرہ منتری ماتیو سیلوینی نے کہا ہے کہ وہ اٹلی کو یوروپ کا ریفیوزی کیمپ نہیں بننے دیں گے. ماتیو سیلوینی کل اٹلی کے سسلی دویپ کے دورے پر تھے. اتر کوریا نے اپنے 3 اچ سینیا ادھیکاریوں کو ان کے پدوں سے ہٹا دیا ہے. ایسا مانا جا رہا ہے کہ اتر کوریائی سینا میں کنگ جونگ اون اور امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کی آگامی ملاقات کو لے کر گتیرودھ بنا ہوا ہے. ग्वेटमाला में मौजूद अधिकारियों के अनुसार ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी जुलानी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास पूरी ताकत है कि वे साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के सिलसिले में खुद को दोषमुक्त करार दें। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। फेसबुक प्रसारण में मदद की अभिमन्यु कुमार साहा ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।